न्यूलैंड आर्चर शुक्रवार शाम चिवर्स परिवार के यहाँ पहुँचा और शनिवार को उसने हाईबैंक के सप्ताहांत की हर रस्म ईमानदारी से निभाई। सुबह उसने मेजबान और सबसे जीवट मेहमानों संग बर्फ नौका की सैर की, दोपहर में रेजी के साथ फार्म देखा और सजे अस्तबलों में घोड़ों पर लंबा प्रभावशाली व्याख्यान सुना। चाय के बाद अंगीठी के पास उस युवती से बातें की जिसने उसकी सगाई पर दिल टूटने की बात कही थी, पर अब वो अपनी शादी की उम्मीदें चाव से सुना रही थी। आधी रात के करीब उसने एक मेहमान के बिस्तर में सुनहरी मछली रखने और घबराई मौसी के गुसलखाने में चोर बना पुतला रखने में हाथ बंटाया और भोर में बच्चों के कमरे से तहखाने तक चली तकिया लड़ाई में शामिल रहा। पर रविवार को भोजन के बाद उसने छोटी बर्फ गाड़ी उधार ली और स्क्वाइटर क्लिफ चल पड़ा।
स्क्वाइटर क्लिफ के घर को सब हमेशा इतालवी विला कहते थे। जो कभी इटली नहीं गए वे मान लेते, कुछ जो गए थे वे भी। इसे श्री वैंडर लाइडन ने जवानी में बनवाया था। यूरोप की अपनी बड़ी यात्रा से लौटकर मिस लुइजा डागोनेट से विवाह से पहले ये हल्के हरे और सफेद रंग का लकड़ी का बड़ा चौकोर भवन था। खिड़कियों के बीच धारीदार स्तंभ और सामने कोरिंथी खंभों वाला बरामदा। जिस ऊंचाई पर वो खड़ा था वहां से रेलिंग और सजावटी कलशों से घिरी छतें किसी नक्काशी की तरह नीचे उतरती थीं, एक छोटी टेढ़ी मेढ़ी झील तक जिसके किनारे पर दुर्लभ झुकी शाखों वाले देवदार लटके थे। दाएं बाएं वे मशहूर लॉन फैले थे जिनमें एक भी खरपतवार नहीं थी। नमूना पेड़ों से सजे हर पेड़ अलग किस्म का और छोर पर ढलवा लोहे के नक्काशीदार श्रृंगारों वाला लंबा मैदान। नीचे घाटी में चार कमरों का वो पत्थर का घर था जिसे पहले पाटरून ने डच उपनिवेश काल के बड़े जमींदार की उपाधि एक छह हिंदू ने मिली जमीन पर बनवाया था।
एक रंगी बर्फ और सर्दियों के धूसर आसमान के आगे इतालवी विला काफी उदास लगता था। गर्मियों में भी वो घर दूरी बनाए रखता। सबसे साहसी फूलों की क्यारी भी उसके सामने 30 फुट से करीब नहीं आती थी। आर्चर ने घंटी बजाई तो लंबी झनकार किसी मकबरे के भीतर गूंजती लगी और आखिर जो बटलर आया उसके चेहरे पर आखिरी नींद से जगाए आदमी की हैरानी थी। खैर, आर्चर घर का आदमी था इसलिए बिना खबर आने पर भी उसे बताया गया कि काउंटेस ओलेंस्का ठीक पौन घंटे पहले श्रीमती वैन डर लाइडन के साथ शाम की प्रार्थना में गई हैं। श्री वैन डर लाइडन घर पर है साहब, बटलर बोला, पर मुझे लगता है वे झपकी पूरी कर रहे हैं या कल शाम का अखबार पढ़ रहे हैं। आज सुबह गिरजे से लौटते हुए मैंने उन्हें कहते सुना साहब कि दोपहर के भोजन के बाद वे इवनिंग पोस्ट पढ़ेंगे। कहे तो मैं पुस्तकालय के दरवाजे तक जाकर सुन आऊं, पर आर्चर ने धन्यवाद कहा और बोला कि वो महिलाओं से मिलने जाएगा। बटलर ने साफ राहत के साथ उसके पीछे शान से दरवाजा बंद कर दिया। साइस बर्फ गाड़ी अस्तबल ले गया और आर्चर पार्क पार कर बड़ी सड़क की ओर चला। गांव बस 1.5 मील दूर था, पर वो जानता था कि श्रीमती वैन डर लाइडन कभी पैदल नहीं चलती। बग्घी से मिलने के लिए सड़क पकड़नी होगी।
पर जल्द ही सड़क काटती एक पगडंडी पर उसे लाल लबादे में एक छरहरी आकृति दिखी। आगे आगे एक बड़ा कुत्ता दौड़ रहा था। वो लपक कर पहुंचा और श्रीमती ओलेंस्का स्वागत की मुस्कान के साथ रुक गई। अरे आप आ गए, उन्होंने कहा और मफ से हाथ निकाला। लाल लबादा उन्हें जीवंत और चंचल दिखा रहा था, पुरानी एलन मिंगट जैसी। आर्चर हंस पड़ा, उनका हाथ थामते हुए बोला, मैं देखने आया हूँ कि आप किस चीज से भाग रही हैं। उनका चेहरा धुंधला पड़ा पर बोली, जल्द ही देख लेंगे। जवाब ने उसे उलझा दिया, क्यों, क्या जिससे भाग रही थी उसने आ पकड़ा? उन्होंने नास्तासिया जैसे हल्के अंदाज में कंधे उचकाए और हल्के स्वर में कहा, चलते रहे, उपदेश के बाद बहुत ठंड लग रही है और अब क्या फर्क पड़ता है, आप जो आ गए हैं मेरी रक्षा करने। आर्चर की कनपटियों में खून दौड़ गया
और उसने लबादे का एक कोना थाम लिया। एलन, क्या बात है, आपको बताना होगा अभी थोड़ी देर में, पर पहले दौड़ लगाएं, मेरे पैर जमे जा रहे हैं, वे चिल्लाई और लबादा समेट कर बर्फ पर दौड़ पड़ी। कुत्ता भौंकता हुआ चारों ओर कूदता रहा। एक पल आर्चर मुग्ध खड़ा उस लाल उल्का को सफेदी पर चमकते देखता रहा, फिर वो भी पीछे दौड़ा
और दोनों पार्क में खुलने वाले छोटे फाटक पर हंसते हाँफते मिले। उन्होंने ऊपर देखा और मुस्कराई, मुझे पता था आप आएंगे, यानी आप चाहती थीं कि मैं आऊं।
आर्चर ने कहा, इन बचकानी बातों से कहीं बड़ी खुशी के साथ। पेड़ों की सफेद चमक हवा में रहस्यमय उजाला भर रही थी और हर कदम पर बर्फीली जमीन पैरों तले गाती सी लगती। कहां से आ रहे हैं, श्रीमती ओलेंस्का ने पूछा। उसने बताया, फिर जोड़ा, आपकी चिट्ठी मिली इसीलिए आया। थोड़ी चुप्पी के बाद वे बोली, आवाज में हल्की ठंडक लिए, मैंने आपसे कहा था ना मेरा ख्याल रखने को, मुझे किसी के कहने की जरूरत नहीं थी, यानी मैं इतनी बेबस इतनी असहाय दिखती हूँ, आप सब मुझे कैसी दयनीय चीज समझते होंगे, पर यहाँ की औरतों को तो ऐसी कोई जरूरत महसूस ही नहीं होती।
जैसे स्वर्ग की पुण्यात्माओं को नहीं होती।
कैसी जरूरत, उसने धीमे स्वर में पूछा। ओ मुझसे मत पूछिए, मैं आपकी भाषा नहीं जानती, उन्होंने चिढ़कर कहा। जवाब चोट सा लगा, वो पगडंडी पर रुककर उन्हें देखने लगा। अगर मैं आपकी भाषा नहीं बोलता तो आया ही क्यों, ओह मेरे दोस्त, उन्होंने उसकी बाह पर हल्के से हाथ रखा और वो गिड़गिड़ाया। एलेन क्या हुआ है, बताती क्यों नहीं, उन्होंने फिर कंधे उचकाए। स्वर्ग में भला कुछ होता है क्या, कुछ कदम चुपचाप चले, आखिर वे बोली, बताऊंगी, पर कहां कहां कहां, उस विशाल मदरसे जैसे घर में एक पल अकेली नहीं रह सकती, दरवाजे हमेशा खुले और हमेशा कोई नौकर चला आता है, चाय लेकर, लकड़ी लेकर, अखबार लेकर। क्या अमेरिकी घरों में अकेले रहने की कोई जगह नहीं, आप लोग इतने संकोची फिर भी इतने सार्वजनिक हैं। लगता है मैं फिर मठ में हूँ या मंच पर, ऐसे भयानक शिष्ट दर्शकों के सामने जो कभी ताली नहीं बजाते।
अरे आपको हम पसंद ही नहीं, आर्चर पुकार उठा।
वे पुराने पाटरून के घर के सामने से गुजर रहे थे, चपटी दीवारें, बीच की चिमनी के गिर्द सिमटी छोटी चौकोर खिड़कियां, किवाड़ खुले थे और एक धुली धुलाई खिड़की से आर्चर को आग की रोशनी दिखी। अरे घर खुला है, उसने कहा। वे रुक गईं। बस आज भर मैंने घर देखने की इच्छा जताई तो श्री वैन डर लाइडन ने आग जलवा दी और खिड़कियां खुलवा दी ताकि सुबह गिरजे से लौटते हुए हम रुक सके। वे सीढ़ियां दौड़कर चढ़ी और दरवाजा खींचा। अभी भी खुला है, क्या किस्मत, आइए आराम से बातें करेंगे। श्रीमती वैन डर लाइडन अपनी मौसियों से मिलने राइनबेक गई हैं। घंटे भर हमें कोई नहीं पूछेगा।
वो उनके पीछे तंग गलियारे में दाखिल हुआ।
उनकी पिछली बात से बुझा उसका मन बेवजह उछलकर फिर खिल उठा। सादा सा छोटा घर आग की रोशनी में चमकते पीतल और लकड़ी की दीवार पट्टियों के साथ मानो जादू से उन्हीं के स्वागत को सजाया गया था। रसोई की अंगीठी में पुराने कांटे से टंगी लोहे की हांडी के नीचे अब भी लाल अंगारा दहक रहा था। टाइलों वाले चूल्हे के दोनों ओर सरकंडे की कुर्सियां आमने सामने रखी थीं और ताकों पर डेल्फ्ट की तश्तरिया कतार में सजी थीं। आर्चर ने झुककर अंगारों पर एक लकड़ी डाली। श्रीमती ओलेंस्का ने लबादा उतारा और एक कुर्सी पर बैठ गई। वो अंगीठी से टिककर उन्हें देखने लगा। अब तो हंस रही हैं, पर चिट्ठी लिखते समय आप दुखी थीं, उसने कहा। हाँ, वे पल भर रुकी, पर आप यहाँ हो तो मैं दुखी महसूस कर ही नहीं सकती, मैं देर तक नहीं रुक सकता, आर्चर ने कहा। होंठ बस इतना ही कहने और आगे कुछ न कहने की कोशिश में कड़े हो गए। जानती हूँ, पर मैं आगे का नहीं सोचती, मैं पल के साथ जीती हूँ।
खुश होती हूँ तो बस उसी पल को देखती हूँ।
ये शब्द किसी प्रलोभन की तरह उसके भीतर उतर गए। उनका रास्ता रोकने के लिए वो अंगीठी से हटकर खिड़की पर गया और बर्फ पर खड़े जंगल के काले तनों को देखने लगा, पर लगा जैसे वे भी जगह बदलकर आ गई हो। वो अब भी उन्हें अपने और पेड़ों के बीच आग के पास बैठी उसी अलसाई मुस्कान के साथ देख रहा था। आर्चर का दिल उसकी इच्छा के विरुद्ध बेतहाशा धड़कने लगा। अगर वे उसी से भाग रही थीं और ये बात कहने के लिए इसी एकांत कमरे में उसके साथ अकेले होने की प्रतीक्षा कर रही थीं। एलन, अगर मैं सच में आपके किसी काम का हूँ, अगर आप सच में चाहती थीं कि मैं आऊँ, तो बताइए क्या गलत है, आप किससे भाग रही हैं, उसने जोर देकर कहा। उसने मुद्रा बदले बिना उनकी ओर मुड़े बिना कहा, होना है तो ऐसे ही हो। दोनों के बीच पूरे कमरे की चौड़ाई रहे और निगाहें बाहर की बर्फ पर टिकी रहे।
देर तक वे चुप रही। उस पल आर्चर ने कल्पना की, लगभग महसूस किया कि वे पीछे से आकर अपनी हल्की बाहें उसके गले में डाल रही हैं। उनकी सांस तक सुनाई देती लगी। उस चमत्कार की प्रतीक्षा में उसकी देह और आत्मा कांप रही थी। तभी उसे घर की ओर आता एक आदमी दिखा।
भारी कोट, खड़ा फर का कॉलर, वो जूलियस ब्यूफर्ट था। आह, आर्चर चीखा और ठहाका मार उठा। श्रीमती ओलिंस का उछलकर उठी, सरक कर उसके पास आई और अपना हाथ उसके हाथ में डाल दिया, पर खिड़की से एक नजर डालते ही उनका चेहरा फक पड़ गया और वे पीछे हट गई। तो ये बात थी, आर्चर ने ताना दिया। मुझे पता नहीं था कि वे यहाँ हैं, वे बुदबुदाई। उनका हाथ अब भी आर्चर के हाथ में था, पर उसने हाथ छुड़ाया, गलियारे में निकला और घर का दरवाजा पूरा खोल दिया। नमस्ते ब्यूफर्ट साहब, इधर से।
श्रीमती ओलेंस का आपका ही इंतजार कर रही थी, उसने कहा। अगली सुबह न्यूयॉर्क लौटते हुए आर्चर ने स्क्वाइटर क्लिफ के वे आखिरी पल थका देने वाली सजीवता से फिर जिए। ब्यूफर्ट उसे श्रीमती ओलेंसका के पास पाकर साफ झुंझलाया था, पर हमेशा की तरह रोब से काम चला ले गया। जो लोग उसे खटकते, उन्हें सिरे से अनदेखा करने का उसका अपना ढंग था। संवेदनशील लोगों को इससे लगता कि वे अदृश्य हैं ही नहीं। तीनों पार्क से गुजरे तो आर्चर को अपनी इस अजीब प्रेत दशा का बोध रहा। इससे स्वाभिमान दुखता था, पर बिना देखे गए देखने का प्रेत जैसा लाभ भी मिलता था। ब्यूफर्ट उसी ठसक से छोटे घर में दाखिल हुआ था, पर भौहों के बीच खिंची खड़ी लकीर वो मिटा नहीं पा रहा था। साफ था कि श्रीमती ओलेंसका को उसके आने की खबर नहीं थी, भले आर्चर से कही एक बात ने ये संभावना झलकाई थी। बहरहाल न्यूयॉर्क छोड़ते समय उन्होंने उसे नहीं बताया था कि कहां जा रही हैं, और इस बिना बताए चले जाने से वो बुरी तरह चिढ़ा था। उसके आने का घोषित कारण था कि पिछली ही शाम उसे एक सुथरा छोटा घर मिला था, अभी बाजार में आया भी नहीं, उनके लिए एकदम सही। जल्दी न लपकी तो कोई और ले उड़ेगा। और बनावटी गुस्से में ऊंची आवाज में वो उलाहना देने लगा कि जिस घड़ी उसने घर ढूंढ निकाला, उसी घड़ी वे भाग खड़ी हुई और उसकी सारी मेहनत बेकार कर दी।
यह नया आविष्कार टेलीफोन जरा और पक्का होता तो मैं ये सब आपसे शहर से ही कह देता। इस वक्त क्लब की आग के सामने पैर सेंक रहा होता, बर्फीले रास्तों में आपको ढूंढता न फिरता। ब्यूफर्ट भुनभुनाया, असली खींच को बनावटी शिकायत के नीचे छिपाते हुए। इसी दरार का लाभ उठाकर श्रीमती ओलेंसका ने बात उस अद्भुत संभावना की ओर मोड़ दी कि किसी दिन लोग एक जगह से दूसरी जगह, बल्कि अविश्वसनीय सपना, एक शहर से दूसरे शहर तक बातें कर सकेंगे। इससे तीनों सहज ही एडगर पो और जूल वर्न का नाम ले बैठे और वे घिसी पिटी बातें दोहराने लगे जो पढ़े लिखे लोग नए आविष्कारों की चर्चा में यूं ही कह जाते हैं, कहीं जल्दी विश्वास कर बैठने से भोले न दिखें। और टेलीफोन की चर्चा उन्हें सुरक्षित बड़े घर तक लौटा लाई। श्रीमती वैन डर लाइडेन अभी नहीं लौटी थी। आर्चर विदा लेकर अपनी बर्फ गाड़ी लेने चला और ब्यूफर्ट काउंटेस के साथ भीतर गया। वैन डर लाइडेन दंपति को बिन बुलाए मेहमान भाते नहीं थे, पर ब्यूफर्ट को रात के भोजन पर जरूर रोक लिया जाएगा और फिर 9 बजे की गाड़ी के लिए स्टेशन भेज दिया जाएगा। बस इतना ही, सफर में निकला कोई सज्जन बिना सामान के रात बिताना चाहे, ये उनकी कल्पना से बाहर था और ब्यूफर्ट जैसे कम घनिष्ठ आदमी से ऐसा कहना उन्हें अप्रिय लगता।
ब्यूफर्ट ये सब जानता था और सोच भी चुका होगा, फिर भी इतनी दूर आया, यही बताता है कि उसकी बेचैनी कितनी बड़ी थी। बेशक वो काउंटेस ओलेंसका के पीछे पड़ा था और ब्यूफर्ट सुंदर स्त्रियों के पीछे एक ही मकसद से पड़ता था। बे औलाद घर उसे कब का उबाऊ लग चुका था और अधिक टिकाऊ दिलासों के अलावा वो अपने ही समाज में इश्क के रोमांच खोजता था। यही वो आदमी था जिससे खुद उनके कथन के अनुसार श्रीमती ओलेंसका भाग रही थी। सवाल ये था कि वे उसकी जिद भरी मांगों से तंग आकर भागी थीं या इसलिए कि उन्हें उससे पार पाने का पूरा भरोसा नहीं था। ये भी हो सकता था कि भागना महज दिखावा हो और न्यूयॉर्क छोड़ना एक चाल। आर्चर सच में ऐसा नहीं मानता था। श्रीमती ओलेंसका को वो कम ही जानता था, पर उसे लगने लगा था कि वो उनका चेहरा या कम से कम उनकी आवाज पढ़ सकता है, और दोनों में ब्यूफर्ट के अचानक प्रकट होने पर झुंझलाहट बल्कि घबराहट झलकी थी। पर आखिर अगर यही सच था तो क्या ये उससे बुरा नहीं था कि वे उससे मिलने के लिए ही न्यूयॉर्क से निकली होती? अगर ऐसा था तो वे दिलचस्प रहना बंद कर देती थी, सबसे भोंडी पाखंडिनों की कतार में जा खड़ी होती थी। ब्यूफर्ट से इश्क लड़ाने वाली औरत सदा के लिए श्रेणीबद्ध हो जाती थी।
नहीं, अगर वे ब्यूफर्ट को परखती थी, शायद उसे तुच्छ भी समझती थी।
फिर भी उन चीजों की ओर खिंचती थीं जो उसे बाकी मर्दों से अलग करती थीं। दो महाद्वीपों और दो समाजों की उसकी आदत, कलाकारों, अभिनेताओं और दुनिया की नजर में चढ़े लोगों से घनिष्ठता, स्थानीय पूर्व ग्रहों के प्रति उसकी शांत उपेक्षा, तो ये हजार गुना बुरा था। ब्यूफर्ट भोंडा था, अनपढ़ था, पैसे का घमंडी था, पर उसके जीवन की परिस्थितियों और जन्मजात चतुराई ने उसे बातचीत में उन कई नैतिक और सामाजिक रूप से बेहतर आदमियों से ज्यादा दिलचस्प बना दिया था, जिनका क्षितिज बैटरी और सेंट्रल पार्क के बीच सिमटा था। किसी बड़े संसार से आया इंसान ये फर्क कैसे न महसूस करता और कैसे न खिंचता।
श्रीमती ओलेंस्का ने खींच के एक पल में आर्चर से कहा था कि वे दोनों एक भाषा नहीं बोलते, और युवक जानता था कि एक अर्थ में ये सच था, पर ब्यूफर्ट उनकी भाषा का हर मोड़ समझता था और उसे धारा प्रवाह बोलता था। उसकी जीवन दृष्टि, लहजा, रवैया सब काउंट ओलेंस्की की चिट्ठी से झलकी चीजों की भद्दी नकल भर थे। काउंट की पत्नी की नजर में ये ब्यूफर्ट के विरुद्ध जा सकता था, पर आर्चर इतना नासमझ नहीं था कि माने। एलेन ओलेंस्का जैसी युवती अतीत की याद दिलाने वाली हर चीज को जरूर ठुकरा देगी। वे भले मानती हों कि उन्होंने अतीत से पूरी बगावत कर ली है, पर जिन चीजों ने उन्हें उस अतीत में मोहा था, वे उनकी इच्छा के विरुद्ध भी उन्हें खींचती रहेंगी। इस तरह कष्टदायक निष्पक्षता से युवक ब्यूफर्ट और उसकी शिकार दोनों का मामला परखता रहा, और उसके भीतर एक इच्छा साफ होती गई उन्हें सच का बोध कराने की। कभी कभी तो लगता वे मांग ही यही रही हैं कि कोई उन्हें बोध करा दे।
उस शाम आर्चर ने लंदन से आई किताबों का बक्सा खोला। बक्सा बेसब्री से प्रतीक्षित चीजों से भरा था। हर्बर्ट स्पेंसर की नई जिल्द, प्रतिभाशाली अल्फोंस दोदे की और कहानियां, और जॉर्ज एलियट का मिडिल मार्च, जिसकी पत्रिकाओं में चर्चा थी। इस दावत की खातिर उसने रात के खाने के 3 न्योते ठुकराए थे, पर किताब प्रेमी के आनंद से पन्ने पलटते हुए भी उसे पता नहीं था कि पढ़ क्या रहा है। किताबें एक एक कर हाथ से छूटती गई। तभी उनके बीच उसे कविताओं की एक छोटी किताब मिली, जो उसने केवल शीर्षक देखकर मंगाई थी, जीवन का घर। खोलते ही वो ऐसे वातावरण में डूब गया जैसा किसी किताब में कभी नहीं मिला था। इतना गर्म, इतना समृद्ध, इतना कोमल कि सीधी सादी भावनाएं भी रहस्यमय सौंदर्य में रंग जाती थी। रात भर वो उन जादुई पन्नों में एक स्त्री की छवि का पीछा करता रहा, जिसका चेहरा एलेन ओलेंस्का का था, पर सुबह जागकर भूरी पत्थर की इमारतें देखी, दफ्तर की मेज और ग्रेस चर्च की पारिवारिक बेंच याद आई, और पार्क की वो घड़ी रात के सपने जितनी असंभव हो गई।
अरे भैया, कितने पीले पड़ गए हो, जेनी ने नाश्ते पर कॉफी का प्याला थामे कहा, और माँ ने जोड़ा, न्यूलैंड आजकल तुम्हें खांसते सुनती हूँ, कहीं काम से खुद को मार तो नहीं रहे। दोनों को पक्का यकीन था कि कठोर मालिकों के दबाव में वो पेशे के सबसे थकाऊ काम ढो रहा है, और उसने उनकी ये गलतफहमी दूर करना कभी जरूरी नहीं समझा।
अगले 2-3 दिन घिसटते बीते। रोजमर्रा का स्वाद मुंह में राख जैसा था, और कभी कभी लगता कि भविष्य उसे जिंदा दफन कर रहा है। काउंटेस ओलेंस्का या उस सुथरे छोटे घर की कोई खबर नहीं आई। क्लब में ब्यूफर्ट से सामना हुआ तो विस्ट की मेजों के पार बस सिर हिलाकर अभिवादन हुआ। चौथी शाम घर लौटने पर ही उसे इंतजार करती चिट सामने मिली। कल देर से आइएगा, मुझे आपको समझाना है, एलन, बस इतना ही। उस शाम बाहर खाने गए युवक ने मुस्कुराकर चिट जेब में रखी। वाक्य का फ्रांसीसी ढंग उसे भा गया था। खाने के बाद वो नाटक देखने गया, और आधी रात के बाद घर लौटकर उसने चिट फिर निकाली और धीरे धीरे कई बार पढ़ी। जवाब देने के कई ढंग सूझे, और उत्तेजित रात का बड़ा हिस्सा वो हर विकल्प को तौलता जागता रहा। सुबह हुई तो फैसला हो चुका था। उसने जल्दी जल्दी कुछ कपड़े बैग में ठूंसे और तय किया कि उसी दोपहर सेंट ऑगस्टीन जाने वाले जहाज पर सवार हो जाएगा।